श्रोताओं, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्यवचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, आपको मेरा मसीही नमस्कार मिले। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की कृपा से सही सलामत ही होंगे। मित्रों, आज फिर से हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम जीवित परमेश्वर के वचनों में से सीखें। पिछले अध्ययन में हमने लय व्यवस्था की पुस्तक 18 अध्याय के इन विषयों पर चर्चा किया, सामाजिक मनाही की भूमिका, संबंधियों के साथ सहवास की मनाही, विविध पाप की मनाही, अपने बच्चों को मोलेक देवता के लिए चढ़ाने की मनाही, विकृत सहवास की मनाही और इन पापों के कारण पलिस्तियों को बाहर निकाला जाना। आज हम लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 19 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और इस अध्याय का शीर्षक है सामाजिक पाप, जीवन परिस्थितियों में आज्ञाओं का उपयोग। प्रिय मित्र, हम इस पुस्तक के उस भाग में हैं जहां 10 आज्ञाओं को राष्ट्र के सामाजिक जीवन के संबंध में समझाया गया है। इस विशिष्ट भाग में जो व्यवहारिकता है उससे ज्यादा व्यवहारिकता मुझे और कहीं नजर नहीं आती है। परमेश्वर की व्यवस्था हमें यह बताता है कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। लय व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय के 2 पद में हम इसे पाते हैं। इसराइली लोगों के जीवन के सभी पहलू के लिए यह महत्वपूर्ण और बुनियादी था। इसमें परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी या मांग की उन सब का स्पष्टीकरण दिया है। इसने उनके जीवन की दिनचर्या के हर बात में प्रवेश किया है और परमेश्वर के लोगों के प्रतिदिन के जीवन के सभी दैनिक संबंधों में पवित्रता सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। आज हमें इसी बात पर जोर देने की जरूरत है कि यह सिर्फ एक सिद्धांत ही नहीं है, परंतु परमेश्वर का मकसद था कि हम उसे जीवन में उतारें। प्रिय मित्र, व्यवस्था जिस पवित्रता की मांग करती है उसे वह उसे स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकती। उसने मांग की है परंतु इसकी आपूर्ति नहीं की है। उसने व्यवस्था की धार्मिकता को प्रकट किया परंतु जिस उच्च स्तर की मांग की है वह मनुष्य के प्रयास से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कि रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा है। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। मित्रों, यह कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर रहने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। मसीही जीवन जीने के लिए यही वह सामर्थ है जिसकी जरूरत है। प्रिय मित्र, इस अध्याय में दिया गया कारण मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ या मैं ही ईश्वर हूँ 16 बार इस अध्याय में आया है। यह सही और गलत के बीच एक रेखा खींचता है। सिर्फ परमेश्वर अकेला पवित्र और अपवित्र के बीच एक तीक्ष्ण अंतर करता है। दूसरा और कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय मित्र, इस अध्याय का अध्ययन हम इन विधियों पर करेंगे: मनुष्य का परमेश्वर से संबंध, मनुष्य का गरीबों से संबंध, मनुष्य का अपने पड़ोसी से संबंध और मनुष्य का संबंध विभिन्न जीवन परिस्थितियों में। आइए अब हम प्रथम बिंदु मनुष्य का परमेश्वर से संबंध पर विचार करें। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। परमेश्वर जो व्यवस्था देने वाला है मूसा को निर्देश देता है और ये 10 आज्ञाओं के भाग को आगे बढ़ाता है। परमेश्वर वो स्वयं पवित्र है, इस आधार पर पवित्र चाल चलन को निर्धारित करता है। यह ध्यान देने की बात है कि परमेश्वर आज भी वही चाल चलन की मांग करता है, जैसे पहला कुरिन्थियों के पत्री 10 अध्याय उसके 31 पद, दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद, पहला पत्रस 1 अध्याय 13 से 16 पद में लिखा है। सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सो यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। इस कारण अपने अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है, और आज्ञाकारी बालकों के नाए अपनी आज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रिय मित्र, व्यवस्था के अधीन और अनुग्रह के अधीन पवित्र चाल चलन की मांग के बीच एक प्रमुख अंतर यह है कि आज विश्वासियों को पवित्र आत्मा के रूप में सामर्थ्य दी गई है। हम जीवित यीशु के साथ जोड़े गए हैं और पुरानी बातें बीत गई है। अब हम आदम के साथ जुड़े हुए नहीं हैं और ना व्यवस्था के साथ जुड़े हैं। हम मसीह से जुड़े हैं और हमें उसे संतुष्ट करने की कोशिश करनी है। आप देखिए, व्यवस्था के अधीन वे अपने प्रयास से व्यवस्था को पूरा करना चाहते थे। उनको सीखना था कि देह हमेशा असफल होगा। इसके विपरीत हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जैसे लिखा है रोमियों के पत्र 8 अध्याय उसके 3-4 पद, गलतियों के पत्र 5 अध्याय 22-23 पद में। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सके, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। व्यवस्था इतना दूर तक कभी नहीं गई। परमेश्वर का पुत्र हमें उच्च स्तर पर लाना चाहता है। जिस विशेष क्षेत्र में वे कमजोर थे, उसी क्षेत्र पर परमेश्वर अपनी आज्ञाओं पर जोर देता है। इसराइल का इतिहास हमें दिखाएगा कि परमेश्वर उनकी कमजोरियों को समझाता था। उन्हें विश्राम दिन मनाने, मूर्ति पूजा से दूर रहने, परमेश्वर के लिए उचित बलिदान के बारे में निर्देश दिए थे। यही वे क्षेत्र हैं जिन्हें बाद में उन्होंने तोड़ा। प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर उन्हें पवित्र होने के लिए कहते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे मित्र, यह अजीब सा लग सकता है कि परमेश्वर माता पिता के आदर करने की आज्ञा से शुरू करता है, लेकिन यह इतना अजीब नहीं है। जब हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों के लिए परमेश्वर के स्थान में खड़े होते हैं और बच्चे माता पिता की आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखते हैं। छोटी छोटी बातों को सीखना हम घर से शुरू करते हैं। तब वह आगे कहता है, मेरा विश्राम दिन मानना। परमेश्वर ने मनुष्य के समय का 7वां भाग और उसके संपत्तियों का 10वां भाग मांगा है। पहले दिए गए 2 आज्ञाओं में 10 आज्ञाओं के 2 प्रमुख भाग निहित हैं। मनुष्य को मनुष्य के प्रति और मनुष्य की परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारी या कर्तव्य। प्रभु यीशु ने इसे परमेश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम के रूप में संक्षिप्त किया है। उसने मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 36-40 में कहा है कि व्यवस्था का सार यही है। प्रिय मित्र, इसराइलियों को दी गई विश्राम दिन से संबंधित व्यवस्था विश्राम दिन विधि नैतिक आधार पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह इसराइलियों के लिए परमेश्वर की स्वेच्छा से दी हुई आज्ञा है। इसराइली इस समय धर्मभ्रष्टता के पाप में एकदम गिर चुके थे। आमोस की पुस्तक 8 अध्याय उसके 5 पद में उन्होंने विश्राम दिन मानने से इनकार किया, यह कहते हुए नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सकें, और विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एवा को छोटा और शेकेल को भारी कर दें और छल से दंडी मारें। लय व्यवस्था की पुस्तक 19 उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तुम मूर्तों की ओर न फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर न बना लेना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यहाँ प्रथम 2 आज्ञाएं हैं। यहाँ पर मूर्तियों की ओर देखना भी मना है। अन्य जातियों की आराधना की भव्य और तड़क भड़क आंखों के लिए आकर्षण था। आज भी यह ऐसा ही है। आज के किसी भी धर्म के पर्व त्योहार को देखें कि किस प्रकार भव्य मंडपों को बनाते हैं और बिना मतलब अरबों रुपए को बर्बाद करते हैं। यह केवल दिखाने के लिए होता है। उन्हें न तो देवताओं अर्थात मूर्तियों को देखना था और न ही उनको बनाना था। परमेश्वर प्रतिमाओं का तिरस्कार करते हैं क्योंकि वे न तो कुछ हैं और न कुछ कर सकते हैं। लय व्यवस्था 19 अध्याय उसके 5-8 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए वह आग में जला दिया जाए, और यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो यह घृणित ठहरेगा और ग्रहण न किया जाएगा। और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है, इसलिए उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। यहाँ कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है। फिर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि मेल मिलाप का बलिदान को अपनी इच्छा से चढ़ाना था, यद्यपि यह एक स्व इच्छा बलिदान था। बलिदान चढ़ाने वाले को बताए गए नियम से कोई राहत नहीं था। बताए गए नियम के अनुसार नहीं करने से उसे दंडित किया जाता था ताकि लोग सबक ले सकें। प्रिय मित्र, आज मसीह सेवा में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनको विशेष छूट प्राप्त है जो कोई नहीं ले सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि वे कलीसिया में अधिक दान देते हैं, उन्हें विशेष स्थान और विशेष आदर मिलना चाहिए। प्रिय मित्र, ध्यान दीजिए कि मेल मिलाप के बलिदान स्वेच्छा से देना था, लेकिन उन्हें बताए गए नियम को बारीकी से पूरा करना था। हमें परमेश्वर के पास परमेश्वर के शर्त पर ही आना होगा। बताए गए नियम से किसी भी तरह के चूक पर मनुष्य को दंडित किया जाता था ताकि लोग सबक सीख सकें। यह एक सकारात्मक नियम था, न कि नैतिक नियम। इसी कारण असफलता का खतरा ज्यादा था। आज कितने लोग कलीसिया के कुछ करने की शपथ लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि उन्हें उनको पूरा करने की जरूरत नहीं है, अगर वे नहीं करना चाहते हैं तब। प्रिय मित्र, अगर आप इसे स्वेच्छा से करते हैं तो उसे सही तरीके से करें। प्रिय मित्र, दूरदर्शन में प्रसारित हेतु संदेश रिकॉर्ड करने के लिए मेरा एक मित्र दूरदर्शन केंद्र में गया था। वहां लोग एक प्रसिद्ध कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे थे, सो मेरा मित्र उसे देखने के लिए रुका। जो रिकॉर्ड करा रहे थे उनके समर्पण से प्रभावित मेरा मित्र बहुत देर तक वहां रुका रहा। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। मैंने बहुत समय ऐसे मसीहों के साथ समय व्यतीत किया है जो बहुत समर्पित हैं। इस तरह रुकने से मेरे मित्र को लाभ हुआ। मुझे तो पता था कि वे क्यों इतना समर्पित थे। वे लालच के कारण समर्पित थे। उनके कामों के लिए उनको बहुत अधिक धन मिलता था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने उसके लिए अपना सब कुछ दे दिया। प्रिय मित्र, बहुत से मसीही कार्यों की जिम्मेदारी अपनी इच्छा से लेते हैं और बाद में कार्यों को पूरा न करने का बहाना यह बनाते हैं कि यह तो स्वेच्छा का काम है। परमेश्वर कहता है, यदि आप स्वेच्छा से परमेश्वर के पास आते हैं तो पूर्ण मन से आएं। परमेश्वर का कोई काम अपने हाथ में न लें यदि आप उसको करने के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। मेरा विचार है कि बहुत लोगों के आलसीपन का एक दिन न्याय होगा। कुछ इस बात का घमंड करते हैं कि उन्होंने काम किया है। देखो, मैंने संडे स्कूल में पढ़ाया। मेरे मित्र, आप कितनी बार कक्षा में देर से गए, कितनी बार आप पाठ तैयार करने में असफल हुए। मैं आपको बताता हूं कि दूरदर्शन में दर्शक की भीड़ इस बात को ताड़ लेती है। संडे स्कूल के शिक्षक पन्नों को फड़फड़ाते हैं इस कोशिश में कि बताने के लिए कि उनको कुछ मिले। मेरे मित्र, परमेश्वर इस बात का एक दिन न्याय करेगा। परमेश्वर कहता है कि हम कोई भी स्वेच्छा बलि न चढ़ाएं अगर हम यह काम परमेश्वर के बताए नियम के अनुसार नहीं करते हैं। प्रिय मित्र, आइए अब हम दूसरे बिंदु मनुष्य का गरीबी के साथ संबंध पर विचार करें। लेवियता की पुस्तक 19 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना और अपनी दाग की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना और अपनी दाग की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना, उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मित्र, यह गरीबों के लिए परमेश्वर का अद्भुत उपाय है। परमेश्वर ने किसी को दान पर जीने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर किसी को बेकार बैठने और कल्याण चेक प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी है। गरीबों को काम करने का अवसर देकर उनकी सहायता की जाती थी। यह ईश्वरहीन सामाजिकता और विवेकहीन धन संग्रह के बीच एक अद्भुत संतुलन था। मनुष्य द्वारा लगाया गया पेड़ का पहला फल ना खाना, गरीबों के लिए छोड़ जाना, हाथ से कटनी के प्राचीन तरीके में 10% से 20% अनाज खेत में रह जाता था। यही नियम अंगूर बारी के लिए भी लागू होता था। मैं एक शहर के एक सभा में था और एक व्यक्ति ने मुझे अंगूर बारी में जाकर अंगूर बटोरने को कहा, क्योंकि वह जानता था कि मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। कटनी हो चुका था और तोड़ने वाले जा चुके थे। अगर मेरे पास एक ट्रक होता तो मैं एक ट्रक अंगूर बटोर सकता था। शाम के सभा में मैंने लोगों को बताया कि मैं दिन में अंगूर बटोर रहा था। इसी तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों की देखभाल की। उसके गरीबों के साथ इस तरह के व्यवहार से गरीब और अमीर दोनों ने परमेश्वर के हाथ की भलाई की, कामों की बढ़ाई की। प्रिय मित्र, आइए अब हम तीसरे बिंदु पर जाते हैं, मनुष्य का अपना पड़ोसी से संबंध। लेवियता की पुस्तक 19 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, तुम चोरी न करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना, मैं यहोवा हूँ। यह आठवां और नवां आज्ञाओं को दोहराता है, जैसे निर्गमन के पुस्तक 20 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा है, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। यहाँ चोरी करना, धोखा देना, झूठ बोलना सभी शामिल है। परमेश्वर की परिभाषा के अनुसार धोखा देना चोरी करना है। 12 पद में तीसरी आज्ञा शामिल है, परमेश्वर का नाम पवित्र है। परमेश्वर के जन को अपने लेन देन में परमेश्वर के नाम की पवित्रता को ईमानदार और सच्चाई के साथ प्रदर्शित करना है। हम लय व्यवस्था 19 के 13 पद में पढ़ते हैं, एक दूसरे पर अंधेर न करना और न एक दूसरे को लूट लेना, और मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक न रहने पाए। मित्र, जो हमारे लिए काम करता है उसको हमें मजदूरी देना है। क्या मैं आपको कहूं कि परमेश्वर न्याय के दिन मजदूर के साथ होगा? मेरा पिता काम करने वाला एक व्यक्ति था और मैं किसी भी बात से बढ़कर इसी बात के लिए उसे स्मरण करता हूँ। उसने उत्तर प्रदेश की एक कंपनी में काम किया और बहुत बार मैंने पाया कि वह आर्थिक तंगी से परेशान थे। प्रिय मित्र, इस संबंध में याकूब 5 अध्याय उसके 1 और 2 पद में कहता है, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। इसी अध्याय के 6 पद में आगे कहता है, तुमने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला है, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। ईश्वर रहित मजदूर होना एक भयानक बात है और ईश्वर रहित धन संग्रह करने वाला भी ऐसा ही है। इस समय हम लोगों को एक दूसरे व्यक्ति से बड़ा खतरा है। लय व्यवस्था 19 अध्याय के 14 पद में लिखा है, बहरे को शाप न देना और न अंधे के आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय माना, मैं यहोवा हूँ। एक अंधा व्यक्ति ने मुझे बताया कि एक बेचने वाले ने जो उसके घर आया उसे धोखा दिया। क्या मैं आपसे कहूँ यह भयानक बात आज भी होता है? अंधों और गूंगों के ध्यान रखने में परमेश्वर अपने नाम पर दोहरा जोर देता है। कमजोर, लाचार और पीड़ितों के प्रति यह परमेश्वर का ध्यान और मनुष्य के कठोर मन के प्रति यह परमेश्वर का न्याय है। लय व्यवस्था 19 उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, न्याय में कुटिलता न करना और न तो कंगाल का पक्ष करना और न बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। प्रिय मित्र, न्याय आसन पर बैठे न्यायाधीश के लिए यहाँ एक शब्द है और आज के हमारे न्यायाधीशों के लिए इस शब्द की कितनी जरूरत है। न्यायासन पर बैठे न्यायाधीश को समझना चाहिए कि उसे वैसे न्याय करना है जैसे परमेश्वर करता है। काश उनमें से कुछ याद रखते कि वे इस पद पर इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें रखा है, बल्कि इसलिए कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं और उन्हें बिना पक्षपात के न्याय करना है। प्रिय मित्र, पुस्तक किंग हेनरी 8 में शेक्सपियर ने लिखा है, स्वर्ग अभी सबसे ऊपर है, वहाँ एक न्यायाधीश बैठा है, कोई राजा उसे भ्रष्ट नहीं कर सकता। सुकरात ने कहा है, 4 बातें न्यायाधीश की है, सज्जनता से सुनना, बुद्धिमानी से उत्तर देना, धैर्य से विचार करना और पक्षपात रहित निर्णय लेना। लय व्यवस्था 19 अध्याय के 16 से 18 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना और एक दूसरे के लोहू बहाने की युक्तियां ना बांधना, मैं यहोवा हूँ। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसियों को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। प्रिय मित्र, बातों को फैलाना धोखा देना है। अगर सच कहने में पड़ोसी की बर्बादी है तो चुप रहना ही उत्तम है। स्कॉट ने लिखा है, बिना सोचे समझे बोलने वाला अपने फुसफुसाने के द्वारा ईमानदार को काटता है। किसी और ने कहा है, आप हर एक सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन आप दोहरा सकते हैं। याकूब ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। किसी ने उसके पत्री पर नरक में आग नामक एक छोटी पुस्तिका लिखा है। क्या आप जानते हैं यह क्या है? यह आपके मुंह के अंदर की एक छोटी सी जीव है। यह एक भयानक चीज है। यह संसार में सबसे भयानक, अनुबम से भी ज्यादा भयानक वस्तु है। प्रिय मित्र, यहाँ लहू बहाने का अर्थ है हत्या करना। बैर को हत्या के समकक्ष नहीं रखा गया है, लेकिन यह मान लिया गया है कि हमारे प्रभु यीशु ने दोनों को जोड़ा। और मत्ती रची सुसमाचार उसके 5 अध्याय और 21 और 22 पद में कहा कि यदि तुम बैर करते हो तो तुम एक हत्यारे हो। प्रिय मित्र, इन सभी नकारात्मक निषेध आज्ञाओं का उत्तर सकारात्मक आज्ञा, परंतु अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना में पाया जाता है। पौलुस ने मसीहों के लिए इन सब का सारांश गलतियों के पत्र 6 अध्याय उसके 1 पद में निकाला है। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। प्रिय मित्र, आइए अब हम चौथी बिंदु मनुष्य का संबंध विभिन्न जीवन परिस्थितियों में पर विचार करें। क्या आप जानते हैं जब आप ऐसे ही कपड़े धोते हैं तो क्या होता है? प्रतीकों और रीतियों के द्वारा परमेश्वर उन्हें महान सच्चाइयों को सिखा रहे हैं। उन्हें कृत्रिम पशु और कृत्रिम पौधों को नहीं लगाना था, उन्हें यह सिखाना था कि वे सत्य और असत्य को न मिलाएं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में गेहूं और जंगली पौधों के दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु ने दर्शाया है। पहला क्रंथियों के पत्र 10 अध्याय उसके 21 पद में पौलुस कहता है, तुम प्रभु के प्याले और शैतान के प्याले एक साथ नहीं पी सकते, तुम प्रभु के मेज और शैतान के मेज में सहभागी नहीं हो सकते। लुका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 16 पद में यीशु ने कहा, तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। लयव्यवस्था की पुस्तक उसके 19 अध्याय 20 से 22 में हम पढ़ते हैं, फिर कोई स्त्री दासी हो और उसकी मंगनी किसी पुरुष से हुई हो, परंतु वह न तो दाम से और न सेंटमेंट स्वाधीन की गई हो, उससे यदि कोई कुकर्म करे तो उन दोनों को दंड तो मिले, पर उस स्त्री के स्वाधीन न होने के कारण वे दोनों मार न डाले जाएं। पर वह पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए, और याजक उसके किए हुए पाप के कारण दोष बलि के मेढ़े के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। यह फिर से सातवीं आज्ञा की ओर जाता है, यह दासी की रक्षा करता है। यहाँ स्वाभाविक सवाल खड़ा होता है कि क्या परमेश्वर दास प्रथा पर सहमति देता है? जी नहीं, परमेश्वर मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 8 पद में तालाक मामला के समान मनुष्य के कठोर मन से उत्पन्न पापमय परिस्थितियों को पहचान रहा है। पुरुष की ओर पाप बलि चढ़ाना उसके पाप को दर्शाता है, यहाँ स्त्री ने पाप बलि नहीं चढ़ाई। लयव्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय उसके 23 से 25 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर जब तुम कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे रहें, इसलिए उनमें से कुछ ना खाया जाए, और 4वें वर्ष में उनके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे, तब 5वें वर्ष में तुम उनके फल खाना, इसलिए कि उनसे तुमको बहुत फल मिले। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यह उनको अजीब सा लग सकता है जो पेड़ पौधों से संबंधित ज्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं। फिर भी हमें यहाँ बताया गया है कि फलदायक पेड़ जल्दी बढ़ता और बेहतर फल देता है यदि हम शुरुआती वर्ष में उसके कलियों को तोड़ते हैं। परमेश्वर इसके बारे में जानता था और इसका आत्मिक शिक्षा यह है कि प्रथम फल परमेश्वर का है और यह हमें सिखाता है। याकूब 1 उसके 17 पद के अनुसार, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। लय व्यवस्था 19 अध्याय के 26 से 28 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तुम लोहू लगा हुआ कुछ मांस ना खाना और ना टोना करना और ना शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानना, अपने सिर में घिरा रखकर ना मुड़ाना और ना अपने गाल के बालों को मुड़ाना, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। यहाँ 6 आज्ञाएं हैं जो अन्य जातियों के अंधविश्वास और कुप्रथाओं की निंदा करता है। उनको लहू मिलाए हुए मांस नहीं खाना था, उन्हें बाल नहीं मुंडाना था और ना टिक्की रखना था, प्रियजन की मृत्यु पर उन्हें अन्य जातियों के समान आचरण नहीं करना था। लय व्यवस्था 19 उसके 29 पद में हम पढ़ते हैं, अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप में भर जाए। यह अन्य जातियों की कुप्रथा की निंदा करता है जो आज तक कुछ लोगों में वर्तमान है। मैंने पढ़ा है कि देश में कुछ लोग हैं जो अपनी पत्नी के वेश्या बनने से प्राप्त रुपयों से कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। यह कितनी भयानक बात है। हम लय व्यवस्था 19 उसके 30 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मेरे विश्राम दिन को माना करना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। विश्राम दिन परमेश्वर और इसराइली संतान के बीच एक संबंध का प्रतीक था और उन्हें इसे मानना था। यह निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय उसके 13 से 17 पद में विस्तार से बताया गया है। हम लय व्यवस्था 19 उसके 31 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यह बहुत सिद्धि और शैतानवाद के विरुद्ध कई चेतावनियों में से एक है। देवी शक्ति और शैतानिक चरित्र के व्यवहार को धर्मशास्त्र में पहचाना गया है और इसे नकारा भी गया है। हमलाई व्यवस्था 19 उसके 32 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदरमान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। मित्रों, बुजुर्गों को आदर देना है, इसे धर्मशास्त्र में भी बार बार दोहराया गया है। तब हम लय व्यवस्था 19 के 33 और 34 पद में पढ़ते हैं, और यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में होकर तुम्हारे संग रहे तो उसको दुख न देना। जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। उनके बीच रहने वाला परदेशी के साथ दया भाव से व्यवहार करना था और उससे प्रेम करना था। वह उनको याद दिलाता था कि वे भी एक दिन मिस्र देश में एक अजनबी अर्थात एक परदेशी थे, परदेशी उनके लिए एक पड़ोसी था। तब हम आगे पढ़ते हैं लय व्यवस्था 19 उसके 35 से 36 पद में, जहाँ पर लिखा हुआ है, तुम न्याय में और परिमाण में और तोल में और नाप में कुटिलता न करना। सच्चा तराजू धर्म के बटकरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया। व्यापारिक लेन देन ईमानदारी के साथ होना था। नपुए और बटकरे सब सही होने थे। परमेश्वर के संतानों को दूसरों से भिन्न होना था, यहाँ तक कि उनके व्यापारिक लेन देन में भी, क्योंकि वे परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। अंत में हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय के 37 पद में लिखा है, इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो, मैं यहोवा हूँ। मित्र, परमेश्वर ही प्रभु है, उसकी आज्ञाओं को मानने का यही कारण पर्याप्त है। क्या आप इसमें और कुछ जोड़ने की सोच सकते हैं? कृपया आप इस पर अवश्य विचार करें। मित्र, हमारे अध्ययन का समय आज यहाँ पर समाप्त होता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम उसकी प्रभुता को अपने जीवन में स्थापित करते हैं। अपने जीवन के सभी व्यवहार में सच्चाई और ईमानदारी दिखाएं, क्योंकि मैं और आप इस धरती पर परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। हम इसके आगे के अध्ययन में और भी बातों को ध्यान में रखेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान। पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान। पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान। पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान।